समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास भी और जानेंगे कि उनके पास हमारे लिए क्या खास जानकारी है। परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं सरफिरोजी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रेशमा तिवारी। रेशमा, आपको भी नमस्कार।
नमस्कार सरफिरोजी एंड गुड आफ्टरनून लिसनर्स, यू आर ट्यून्ड इनटू परिक्रमा ऑन एफएम गोल्ड एट 100.1 मेगाहर्ट्ज़। एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आवर डिस्कशन सेगमेंट डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दिस ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। वी बिगिन विद द हेडलाइंस फर्स्ट। President of Angola, João Lourenço, says India is a key trade partner of Angola and the two countries are committed to further advancing bilateral ties.
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने भारत की पृथ्वी अवलोकन और निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म सिस्टम का पहला सफल परीक्षण किया।
पंजाब पुलिस अरेस्ट टू पर्संस इन अमृतसर फॉर अलेजेडली स्पाइंग फॉर पाकिस्तान।
निर्वाचन आयोग जल्द ही चुनाव संबंधी सभी गतिविधियों के लिए सिंगल प्वाइंट ऐप ईसीआई नेट लॉन्च करेगा।
फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 टू कंक्लूड इन मुंबई टुडे।
और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 आज शाम बिहार के पटना में भव्य उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होंगे।
And now it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. So before we begin with the first topic, let me give you a compliment, Sir Fidozi.
Okay.
That you look very beautiful when you smile.
Thank you so much, Reshma.
Stop blushing. Yeah, you're looking beautiful, actually. It happens with all of us, Sir Fidozi. And you know what? While a frown gradually increases wrinkles on our skin, a smile actually is an exercise for our facial muscles. Now imagine, if a smile is so beneficial, what can a hearty laughter do to you?
Bilkul.
Right? So, but still, we tend to forget to laugh very often, and therefore, this day, the World Laughter Day.
जी बिल्कुल रेशमा, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, क्योंकि जीना इसी का नाम है। और रेशमा, ये बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि जिंदगी जिंदा दिली का ही तो नाम होता है। इसलिए हम सभी के लिए हंसना मुस्कुराना बहुत जरूरी है, और शायद इसीलिए हंसने के लिए एक पूरा दिन समर्पित है। हंसना एक कुदरती प्रक्रिया है, इसके लिए हमें या आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि रेशमा बस इतना करने की जरूरत है कि हम कभी भी खुद को हंसने से मुस्कुराने से ना रोकें।
एब्सोल्युटली, लाफ्टर इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट ट्रांसेंड्स बैरियर्स, ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर इन मोमेंट्स ऑफ जॉय एंड कनेक्शन। रिकॉग्नाइजिंग इट्स इमेंस वैल्यू इन प्रमोटिंग हैप्पीनेस एंड वेलबींग, वर्ल्ड लाफ्टर डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन द फर्स्ट संडे ऑफ मई। This global event serves as a reminder of the healing power of laughter and its ability to foster a positive environment in both personal and social spheres.
बिल्कुल रेशमा, और एक बहुत ही पुरानी कहावत भी है कि लोग कहते हैं हंसने से खून बढ़ने लगता है, और ये काफी हद तक सही भी है, क्योंकि जब अक्सर हम खुश होते हैं तो चेहरे पर एक अलग सा तेज होता है, और इसके अलावा हमारी सेहत भी दुरुस्त रहने लगती है। इसके अलावा हंसने से तनाव कम होता है और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर बना रहता है।
Absolutely. Whether you're guffawing at a sitcom on TV or quietly giggling at a newspaper cartoon, laughing does you good. Laughter is a great form of stress relief, and that's no joke. A good laugh has great short-term effects. When you start to laugh, it doesn't just lighten your load mentally, it actually induces physical changes in your body. It can stimulate many organs. Laughter enhances your intake of oxygen-rich air, stimulates your heart, lungs and muscles, and increases the endorphins that are released by your brain. A rollicking laugh fires up and then cools down your stress response, and it can increase and then decrease your heart rate and blood pressure, and the result? A good, relaxed feeling. Laughter can also stimulate circulation and aid muscle relaxation, both of which can help reduce some of the physical symptoms of stress also.
बिल्कुल रेशमा, आपने बताया कि हंसने का हमारे शरीर पर किस तरह सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन एक हंसने से, स्माइल से, मुस्कुराने से हमारी पर्सनैलिटी पे किस तरह का असर पड़ता है उसके बारे में हमें थोड़ी बात करनी चाहिए. कहते हैं कि जो इंसान स्माइल के साथ, मुस्कुराहट के साथ सामने वाले से मिलता है तो उसका कॉन्फिडेंस नजर आता है, उसकी स्माइल में उसका आत्मविश्वास झलकता है और अक्सर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है सामने वाले पर.
एब्सोल्युटली, लाफ्टर इज एन एसेंशियली पावरफुल टूल फॉर मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड रिड्यूसिंग टेंशन व्हेन इमोशंस आर रनिंग हाई, वेदर विद रोमांटिक पार्टनर्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली और कोवर्कर्स. यू कैन लर्न टू यूज ह्यूमर टू स्मूथ ओवर डिसएग्रीमेंट्स, lower everyone's stress level and communicate in a way that builds up your relationships rather than breaking them down. And now let's move on to our next topic of Dateline, International Firefighters Day. Firefighters embody courage, sacrifice and unwavering commitment to the safety of others. International Firefighters Day, IFFD, observed annually on May 4th, serves as a global tribute to these brave men and women who risk their lives to protect communities from fires and emergencies. It is a day to acknowledge their dedication, commemorate fallen firefighters and raise awareness about fire safety. Firefighters play a critical role in safeguarding lives and property. Their responsibilities extend beyond extinguishing fires. They provide emergency medical services, conduct rescues in disasters, and educate the public on fire prevention. Their work requires immense physical and mental endurance, rigorous training, and a deep sense of duty.
और रेशमा, बात करें अग्निशमन दिवस के इतिहास की तो अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया में एक दुखद घटना से हुई, जब 2 दिसंबर 1998 को विक्टोरिया के लिंटन के पास आग को काबू करने की कोशिश में 5 अग्निशमन कर्मियों की मृत्यु हो गई. इसके बाद अग्निशमन कर्मियों के योगदान को सम्मान देने और महत्व देने के लिए एक वैश्विक आंदोलन शुरू हुआ. अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस की शुरुआत 1999 में उन अग्निशमन कर्मियों की वीरता का सम्मान करने और सभी अग्निशमन कर्मियों को उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए धन्यवाद देने के लिए की गई थी.
With evolving technology, firefighting has seen significant advancements. Thermal imaging cameras help locate individuals in smoke-filled environments, while specialized drones assist in assessing fire outbreaks. Fire-resistant materials and protective gear enhance safety, and AI-driven analytics help predict fire risks and optimize emergency responses. These innovations not only improve efficiency, but also minimize dangers for firefighters, allowing them to tackle emergencies with greater precision.
विशेष लाल और नीला रिबन अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 2025 का प्रतीक है. इसमें लाल रंग आग को दिखाता है जबकि नीला रंग पानी को, और साथ में ये रंग खतरे और सुरक्षा, विनाश और बचाव के बीच संतुलन दिखाते हैं. लाल और नीले रंग का रिबन पहनना शहीद हुए अग्निशामकों की बहादुरी और स्मृति की ओर सम्मान प्रदर्शित करता है और उन लोगों का समर्थन करता है जो सेवा करना जारी रखते हैं.
International Firefighters Day 2025 is a powerful reminder of the dedication, bravery and sacrifices made by firefighters every day. The day is also important for raising awareness about safety, emergency services and disaster management. The significance of International Firefighters Day 2025 can be understood through honoring bravery, promoting public safety, encouraging community support, building disaster preparedness and remembering fallen heroes.
बिल्कुल रेशमा, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 2025 हमें अग्निशमन कर्मियों की बहादुरी, समर्पण और बलिदान की याद दिलाता है. इस दिन को मनाने से अग्निशमन कर्मियों और समाज के बीच का बंधन मजबूत होता है. तो श्रोताओं, अब समय है कि आपको लेकर चलें देश की परिक्रमा पर और अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानें कि उनके पास क्या खास जानकारी है. सबसे पहले कहाँ चल रहे हैं रेशमा?
We'll go to Andhra Pradesh.
Okay.
The Andhra Pradesh state government has signed a memorandum of understanding with leading company Creative Land Asia Private Limited to develop the first transmedia entertainment city in the state on the 1st of May. The Waves Summit 2025, conceptualized by Ministry of Information and Broadcasting, gave impetus to this collaboration. Through this project, Andhra Pradesh is poised to become a hub for creative economy, tourism, skill development, job creation, and digital innovation. We have a report.
The Transmedia Entertainment City, which will be called Creator Land, will be home to cutting-edge facilities for cinema, gaming, advertising, virtual production, and technology-based storytelling. This city will feature a state-of-the-art virtual studio complex with world-class AI-based real-time rendering technology and volumetric capture systems. Theme parks with AR, VR, MR, experiences dedicated gaming zones and esports arenas, and global cinema co-production hub, which will be a platform for international film and digital content collaboration, will be part of the city. This collaboration between Andhra Pradesh State Government and Creative Land Asia has been announced at the ongoing Waves Summit in Mumbai, signifying the impact this summit is having in expanding the scope for audio-visual entertainment sector in India. Jai Sai Vaishnavi from Parikrama, Visakhapatnam.
वेव्स 2025 यानी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट के तीसरे दिन कल आठवां राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो परिषद आयोजित किया गया। इस मौके पर सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने देश के 12 उत्कृष्ट सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को 10वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार से सम्मानित किया। महाराष्ट्र के सांगली जिले का येरडावाड़ी सामुदायिक रेडियो स्टेशन भी इस सूची में शामिल रहा। अधिक जानकारी के लिए चलते हैं हमारी मुंबई संवाद दाता के पास।
सांगली स्थित येरड़ावाणी रेडियो स्टेशन को सामुदायिक सहभागिता में नवाचार की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। पुरस्कार विजेता कार्यक्रम था कहानी सुनंदाची यानी कहानी सुनंदा की। इस कार्यक्रम की कहानी हमें बता रही है स्टेशन अधिकारी नीता जोशी।
हमारे यहाँ की एक महिला सुनंदा एक कयामत से गुजर रही थी, क्योंकि उसे 3 लड़कियां थी और घर में बहुत झगड़ा चल रहा था। सास ससुर कह रहे थे कि बार बार तुम बच्चियों को जन्म देती हो तो हम हमारे बेटे की दूसरी शादी करने वाले हैं। लेकिन उसके पति ने येरलावानी का एक प्रोग्राम सुना जिसमें डॉक्टर ने बताया था एक्स और वाई गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स के बारे में, और कहा था कि अगर किसी महिला को बार बार लड़कियां ही पैदा होती है तो उसमें उसका दोष नहीं है। ये प्रोग्राम सुनने के बाद उसके पति ने दूसरी शादी का निर्णय कैंसिल किया। उसने अपने माँ बाप को बता दिया कि मैं दूसरी शादी नहीं करने वाला हूँ, यही मेरी पत्नी मुझे प्यारी है और ये जो लड़कियां हैं वो मेरे बेटों जैसी है।
येरड़ावाणी इससे पहले भी 2 राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुका है। ये सिर्फ येरड़ावाणी की ही बात नहीं है, बल्कि देश भर के कई सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थानीय संस्कृति, समुदाय की भागीदारी और टिकाऊ विकास के मुद्दों को उजागर करने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, उनकी आवाज बन रहे हैं, और इनसे उत्पन्न हो रहे सकारात्मक बदलाव न केवल प्रेरणादायक है बल्कि सामाजिक बदलाव की दिशा भी तय कर रहे हैं। सांगली से महेश भिसे के साथ परिक्रमा के लिए मुंबई से मैं अंकिता आपटे।
So, Sir Firozi, Waves 2025 is concluding today.
Jee.
Master classes on filmmaking and cultural events are the main attraction on the last day of the 4-day event, which is today. And the event began on Thursday. It was inaugurated by Prime Minister Narendra Modi. From Mumbai, let's now move on to Uttarakhand.
Jee.
The portals of Badrinath Dham opened with traditional rituals in Chamoli district of Uttarakhand this morning. With this, all 4 revered shrines of Uttarakhand, Kedarnath, Gangotri, Yamunotri and Badrinath, are now accessible to pilgrims for darshan. More from our correspondent.
The event was highlighted by the harmonious sounds of military band as the temple complex echoed with the chanting of Jai Badri Vishal. A significant number of devotees gathered to witness the occasion. This year, the temple authorities have implemented several special arrangements to enhance the comfort and safety of the pilgrims. Key improvements have been made in security, healthcare, accommodation and transportation management. Additionally, CCTV cameras have been installed along the routes leading to the temple to monitor traffic and ensure safety, while the presence of police and home guard personnel has been increased. The district administration is dedicated to ensuring that no pilgrims faces any inconvenience during their journey. The state government has also appealed to all pilgrims to contribute to keeping Uttarakhand sacred and clean during their visit. Santosh Thapliyal, Akashwani News, Dehradun.
तो रेशमा, अब झारखंड की भी थोड़ी हलचल ले ली जाए।
श्योर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नवाचार को बढ़ावा देने के अथक प्रयासों को झारखंड में बल मिला है। झारखंड के जमशेदपुर स्थित आरडी एजुकेशन टाटा टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के मेधावी छात्रों ने पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रिक दोपहिया और चार पहिया वाहनों का निर्माण किया है।
झारखंड के जमशेदपुर स्थित आरडी एजुकेशन टाटा टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के मेकाट्रॉनिक्स विभाग के अंतिम वर्ष के छात्रों की टीम ने मिलकर ऐसे वाहनों को डिजाइन और विकसित किया है जो पूरी तरह से रिचार्जेबल बैटरी पैक से संचालित होते हैं और प्रदूषण मुक्त हैं। छात्रों ने बताया कि यह नवाचार उनकी तकनीकी दक्षता और पर्यावरण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
प्रोजेक्ट हम लोग बनाया है, वो सब के बारे पढ़ के हम लोग सारा कॉम्पोनेंट सब एक साथ करके डिजाइन बना के फिर हम लोग ने प्रोजेक्ट बनाया। तो वो प्रोजेक्ट बनाने में हम लोग को मिनिमम 6 मंथ्स लगा है। अभी ईवी को थोड़ा और इनहेंस करेंगे, इसी को मॉडिफाई करेंगे और कम बजट पे ज्यादा अच्छा चीज आप लोग को मिल सके।
छात्रों की यह टीम आगे चलकर इस वाहन के डिजाइन को और बेहतर बनाने और व्यवसायीकरण के बड़े स्तर पर उत्पादन की संभावनाओं को तलाशने की योजना बना रही है।
हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट बनाया वो 60,000 का है, फोर व्हीलर। ये अभी कॉलेज कैंपस के लिए है, इसमें और भी फीचर्स एड ऑन कर सकते हैं जैसे सेफ्टी फीचर्स, अल्ट्रासोनिक सेंसर्स, कैमरा, तो वो भी बहुत कम बजट में।
NTTF की प्राचार्य प्रीता जॉन ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि मौजूदा समय में इलेक्ट्रिक वाहन विशेष रूप से ई बाइक्स एक टिकाऊ और लोकप्रिय परिवहन साधन के रूप में तेजी से उभर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये वाहन आम जनता के लिए एक आकर्षक और हरित विकल्प प्रदान करते हैं।
एक एविडेंस है कि उनकी जो क्रिएटिविटी है, उनकी जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है और उनका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स है, तो उसका एक मॉडल आपको दिख रहा है।
निश्चित रूप से NTTF के छात्रों ने पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रिक दोपहिया और चार पहिया वाहनों का निर्माण कर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है जो हरित तकनीक के क्षेत्र में प्रेरणा का स्रोत बनेगा। परिक्रमा के लिए रांची से शिल्पी की एक रिपोर्ट।
नागपुर में इन दिनों आम और मोटा अनाज के प्रदर्शन के माध्यम से लोगों में मिलेट्स के प्रति जानकारी और विभिन्न किस्मों के आमों का स्वाद चखने का अवसर मिल रहा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे नागपुर संवाददाता।
फलों का राजा कहलाने वाला आम तथा पौष्टिक गुणधर्म से भरपूर मोटा अनाज, इनकी विभिन्न उपज का प्रदर्शन नागपुर में लगाया गया है। महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र से आने वाले रत्नागिरी सिंधुदुर्ग देवगढ़ के GI अर्थात भौगोलिक संकेतांक से संरक्षित हापुस तोतापुरी आमों को यहां प्रदर्शित किया जा रहा है। बाजरा, राई, जवार अर्थात मोटे अनाज को आदिवासी बहुल मेघाट तथा विदर्भ के अलग अलग जिला से भी किसानों ने यहाँ पर प्रदर्शित किया है। इस प्रदर्शन को अच्छा खासा प्रतिसाद लोगों से मिल रहा है। यहाँ आने वाले प्रेक्षक प्रक्रियाकृत किए जाने वाले उत्पादन आमरस, आम्रखंड तथा मैंगो कैंडीज जैसे बने उत्पादन भी खरीद रहे हैं। इस तरह के प्रदर्शन से किसानों को उनके उत्पाद को प्रदर्शित करने के लिए तथा ग्राहक को एक विषमुक्त तथा सेंद्रिय उपज का अपने आहार में सम्मिलित करने की संधि उपलब्ध होती है। परिक्रमा के लिए धनंजय वानखेड़े के साथ में राखी भावसार, आकाशवाणी समाचार, नागपुर।
और रेशमा, अब अपने श्रोताओं को खेल के मैदान की भी थोड़ी हलचल दे दी जाए।
यस, इन IPL क्रिकेट होस्ट कोलकाता नाइट राइडर्स वर एट 136 रन फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स इन 16 ओवर्स अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स एट द ईडन गार्डन्स अ शॉर्ट व्हाइल अगो। कोलकाता वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। इन द सेकेंड मैच दिस इवनिंग पंजाब किंग्स विल फेस लखनऊ सुपर जायंट्स एट धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश एट 7:30 PM।
श्रोताओं, अब आपको लेकर चल रहे हैं आजादी के सफर की ओर।
In today's episode, we remember revolutionary freedom fighter Atul Krishna Ghosh, who died on the 4th of May 1966. Atul Krishna was associated with the Jugantar Group and Anushilan Samiti. He was closely associated with the great revolutionary freedom fighter Bagha Jatin.
Atul Krishna was born in 1890 in Nadia district, now in Bangladesh. While studying in his final year of graduation at Presidency College, Kolkata, he got associated with Bagha Jatin and joined the Anushilan Samiti. He, along with Jatin, founded the revolutionary organization Pathuriaghat Abhyayam Samiti.
Following his arrest and release in the Howrah conspiracy case, Bagha Jatin suspended activities and left Kolkata in 1911 under the responsibility of Atul Krishna. As an organizer, Atul Krishna sheltered revolutionaries. Later, a few members of the Anushilan Samiti formed a new branch of the Seva Samiti under Atul Krishna Ghosh. During this time, Atul Krishna maintained contact with many revolutionaries, including Rash Bihari Bose, Gurdeep Singh, Tarak Nath Das, and other Kumagata Maru patriots.
At the beginning of the First World War, Atul Krishna Ghosh and Bagha Jatin tried to obtain weapons in Germany and launch a revolution against British rule. However, the British authorities became aware of the situation and attacked Balasore, where the weapons were to be delivered. Bagha Jatin was martyred during the operation. The death of Bagha Jatin left Atul Krishna shattered. He was arrested in 1924 and released after 2 years. Atul Krishna passed away on the 4th of May 1966. We salute this great Indian.
We also remember freedom fighter Kyasamabali Chingalaraya Reddy, who was born on the 4th of May 1902 in Kolar district, Karnataka. Reddy is recognized for his role in replacing the Maharaja's rule with a stable government in the princely state of Mysore. After independence, Reddy became the first chief minister of the Mysore state. The state was considerably enlarged in 1956 when it became a linguistically homogeneous Kannada-speaking state within the Union of India and was subsequently renamed as the state of Karnataka.
Reddy was a revolutionary from a very young age. He founded the Prajapaksha after graduating from law school in 1930. The party's main aim was to install a stable government in the princely state of Mysore and support the cause of farmers. The organization soon joined forces with the Prajamitra Mandali and united as the Praja Samyukta Paksha or Mysore People's Federation in 1934.
K. C. Reddy served as the president of the Mysore People's Federation from 1935 to 1937. After 1937, the federation joined forces with the Indian National Congress in the fight for freedom. Reddy also led the Mysore Congress as its president. He served as a member of the Constituent Assembly of India.
After the independence of India in 1947, Reddy was at the forefront of the Mysore Chalo movement, seeking a responsible state government in Mysore state, and went on to become the first chief minister of the state.
This is All India Radio, Bangalore and Bhadravati. Sri K. C. Reddy speaks on Gandhiji and independence.
Many countries gained their independence before and some later than India did. But what is remarkable about Indian independence is that it was achieved by non-violent means instead of resorting to violence. This aspect of Indian independence will ever be enshrined in the temple of history as unique and deserving of homage and adoration.
After his term as Chief Minister, he was elected to be a member of the Mysore Legislative Assembly in 1952.
Subsequently, he served as a member of the Rajya Sabha from 1952 to 1957 and as a member of the Lok Sabha representing Kolar from 1957 to 1962. Reddy also served as the Governor of Madhya Pradesh from 1965 to 1971. Till his death in 1976, Reddy continued to serve the people. We salute the great Indian.
और अब समय है उन खास हस्तियों को याद करने का जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिवस है. रेशमा, सबसे पहले किन्हें याद कर रहे हैं?
Yeah, so let's first of all recall Tyagaraj. He was born on 4th May 1767, also known as Tyagayya. He was a renowned composer of Carnatic music, a form of Indian classical music. He was prolific and highly influential in the development of India's classical music tradition. Tyagaraj and his contemporaries Shyama Shastri and Muthuswami Dikshitar were regarded as the trinity of Carnatic music. He composed thousands of devotional compositions, most in Telugu and in praise of Lord Rama, many of which remain popular even today. Of special mention are his five of his compositions called the Pancharatna Kritis, which are often sung in programs in his honor.
आज ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर जी की पुण्यतिथि है। ये बंगाली नाटककार, संगीतकार, संपादक और चित्रकार थे। ये पहले गैर यूरोपीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। इनके कुछ ऐतिहासिक नाटकों में शामिल हैं पुरुविक्रम, सरोजनी, अश्रुमती, स्वप्नमयी।
टुडे इज ऑल्सो द बर्थडे ऑफ ज्योतिंदर सिंह रंधावा, पॉपुलरली नोन एज ज्योति रंधावा। Professional golfer, and he plays on the Asian Tour, where he won 8 times between 1998 and 2009. He was ranked in the top 100 of the official world golf ranking several times between 2004 and 2009.
आज तबला वादक पंडित किशन महाराज जी की पुण्यतिथि है। पंडित किशन महाराज बनारस घराने के तबला वादक थे। किशन महाराज को कला क्षेत्र में योगदान के लिए भारत सरकार ने सन 1973 में पद्मश्री और सन 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। किशन महाराज तबला वादन में माहिर होने के साथ साथ मूर्तिकार, चित्रकार, वीर रस के कवि और ज्योतिष के मर्मज्ञ भी थे। किशन महाराज ने उस्ताद फयाज खां, पंडित ओंकार ठाकुर, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, पंडित भीमसेन जोशी, वसंत राय, पंडित रविशंकर, उस्ताद अली अकबर खान जैसे बड़े नामों के साथ संगीत की। आइए उनकी पुण्यतिथि पर सुनते हैं उनकी एक प्रस्तुति।
Maharaj had the ability to play cross rhythms and produce complex calculations, particularly in the high patterns. Known as an excellent accompanist, Krishan Maharaj was extremely versatile and capable of playing with an accompaniment, be it with sitar, sarod, dhrupad or dhamar, or even dance. He provided tabla accompaniment to Sitara Devi in the Hindi film Badi Maa in 1945. And within a few years, he was sharing the stage with leading classical musicians like Fayaz Khan, Omkar Nath Thakur, Bade Ghulam Ali Khan, Bheemsen Joshi, Ravi Shankar, Ali Akbar Khan, Vasant Rai, Vilayat Khan, Girija Devi and many others.
आज बाल स्वरूप राही जी की क्या जन्मदिन है। ये भारत के हिंदी कवि और गीतकार हैं। ये अपने गीतों और गजलों के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। इन्होंने बॉलीवुड के लिए कई गाने लिखे हैं। राही ने दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। बाल स्वरूप राही हिंदी कविता के पुराने साधक हैं। सादगी भरे जीवन के साथ एक शुद्ध कवि का जीवन जीने वाले राही जी की गजलें सादा सलीके से गहरी बात कहती हैं। आइए उनकी कविता बिजली की धमकियां उन्हीं की आवाज में सुनते हैं, जिसमें जीवन दर्शन के आवरण में लिपटी खुददारी का बयान दर्ज है।
इन चमकदार कतारों पे नजर रखती हूँ और चुरख बेदाग अंगारों पे नजर रखती हूँ, बेदाग अंगारों पे नजर रखती हूँ और देखी मिट्टी के खिलौने मुझे बहकाओ न तुम, देखी मिट्टी के खिलौने मुझे बहकाओ न तुम और मैं जवानी हूँ सितारों पे नजर बहाओ कि हसरतों की जहर बुझी लौ में, हसरतों की जहर बुझी लौ में मोम का दिल गड़ा दिया मैंने, हसरतों की जहर बुझी लौ में मोम का दिल गड़ा दिया मैंने और कौन बिजली की धमकियां सहता आशियां खुद जला दिया मैंने।
May 4, 1999 was the day when Audrey Kathleen Hepburn, a British actress, was born. Recognized as a film and fashion icon, she was ranked by the American Film Institute as the third greatest female screen legend from the classical Hollywood cinema and was inducted into the International Best Dressed Hall of Fame list. Hepburn began performing as a chorus girl in West End musical theater productions and then had minor appearances in several films. She rose to stardom in the romantic comedy Roman Holiday in 1953 alongside Gregory Peck, for which she became the first actress to win an Academy Award, a Golden Globe Award and a BAFTA Award for a single performance. This went on, and in 1994, Hepburn's contributions to a spoken word recording titled Audrey Hepburn's Enchanted Tales earned her a posthumous Grammy Award for Best Spoken Word Album for Children.
आज अन्ना चांडी जी की जयंती है। ये सन 1937 में एक जिला अदालत में भारत में पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। इसके अलावा ये दुनिया में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद तक पहुंचने वाली दूसरी महिला थी। आज गुरचरण सिंह गरवाल जी की जयंती है। ये एक भारतीय फील्ड फुटबॉलर थे। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इजाजत दीजिए सरफिरोजी और रेशमा को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। इससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, क्योंकि हंसी सबसे बड़ी दवा है। और फिर मिलेंगे जिंदगी के खूबसूरत मोड़ पर। नमस्कार, नमस्कार।